अथवा सब प्रत्याग करके प्रेम मई सेवा किया करते हैं, जैसे भंवर। इस रूप से भ्रमर सब आपकी सेवा कर रहे हैं, ऐसे ही हम जीवों को भी कृष्ण की सेवा करते हैं, सब समय उनके गुणगान में निरत रहे, बल्कि ज्ञान के लिए चेष्टा न करके ज्ञाने प्रयास उत्पाष्य नमंते व जीवंत संग खरीतान बौदीय वातान स्थाने सीतात्मान मनोभी प्रायशो अजीतो अपि जीतः त्रय त्रैलोक्यम। कुछ भी नहीं जानता, हरि कथाओं का सेवन करते 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 ज्ञान के लिए प्रयास न करके, ईश्वर थोड़ा भी तत्व ज्ञान, लीला कथाओं का श्रवण करते 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 भक्ति हो जाए, और इसके अतिरिक्त दूसरी तरफ में मन दिया कि भगवान का तत्व ज्ञान जानेंगे, उसके लिए प्रयास करेंगे, तो बस उनकी ऐश्वर्यमय लीलाओं के तरफ में जाकर के ये प्रेम खंड से सदा के लिए बनती हो
जाए। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
कृष्ण के प्रति आसक्ति का वर्णन किया, उसने ये बताया प्रायो अमी मुनि बना भवदी ये मुख्या गूढ़ बने अति न जहात अघात न देवम। आपके अखिल जस को जो त्रिलोक को पावन करने वाला है, ये आदि पुरुष, ये भ्रमर भी आपके जस का वर्णन करते हैं। ये भ्रमर नहीं बल्कि मुनि है, और कैसे मुनि है, भवदीय मुख्या गुरु बने अपि न जहात अभात्म दैवम। ये मुनिगण है, वन में भी आप गुरु रहने पर भी, गुरु रूप में लीला करने पर भी आपका संग त्याग नहीं करते। भवदीय मुख्या, आपकी जो मुख्या गोपी है, प्रिया है, गुरु बने अपनी वन में निगुण रूप से रहने पर भी, उनके साथ में लीला विलास में प्रमत्त रहने पर भी न जहाती, वहाँ पर भी नहीं छोड़ते हैं, ये वहाँ पर भी ये प्रवेश कर जाते हैं, और उन्हीं का ही जस सबसे अधिक उस लीला, उसी लीला का जस वर्णन अधिक करते हैं। वो लीला भी गुड़ है, वन भी गुड़ है, और आपकी प्रिया भी गुड़ है, इसे प्रिया के साथ भी जब भी रहते हैं तो भी वो छोड़ते हैं। सरस सारस हंस विहंगा चार वृत हित एक शिकित हरि उपास उपास ले चकित्ता हंत मृत दृशोचित मौन। सरसि सारस हंस हंस विहंग चारु वृत हित चेत चित्त हरि उपासित ते चत चित्त हंत मिलित त्रिशोधित मौन। चौपाई की भांति जैसे गायन करेंगे, चौपाई की भांति जितने चौपाई का सुर है सब सुना जाएगा, चार चरण का वैसा। और हाँ,
गोली तो ऊपर ऊपर से गीते समय नीचे गीते समय,
और चौपाई का कैसा कीर्तन होता है, और श्री राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुगपा सरसी हम सारस हंग विहंग चारु गीत हित चेत शीत हरि उपासति ते जत चित्त अंतर्मिलित प्रेषो भी सर्व और चौपाई कैसे होती है और बोलो तो यही होगा और दूसरे स्वर से दूसरा स्वर सरसी सारस सरसी माने सरस नदियों में सरोवरों में सारस सारस रस युक्त कौन रस इसलिए सारस उसका नाम अच्छा इसमें देखो और एक उसमें अर्थ हो जाए सार जो सार को ग्रहण करता है वो सार न सार सौ और सार रसौ रस के शरीर जो है पानी में रहते हैं हंस विहंगा विहंगा माने पक्षी चार उद्गृत हेत चेतस कृष्ण के चारु गीतों को सुनकर बंसी के नाद को सुनकर उनके हृदय को ग्रहण कर लेते हैं खैच आकर्षित करते हैं इसलिए वे सभी वहीं आते हैं जहाँ पर कि कृष्ण बंसी गाते हैं उसी सरोवर के किनारे उड़ करके आ जाते हैं और हरिम उपासक हरि की उपासना करने लगते हैं वे जत चित्ता चित्त को संयत कर और विषयों से हटाकर हंत मिलित दृश्य आँख को बंद कर देते हैं और धृत मौन मौन धारण कर देते हैं इसमें तीन चीज आए जत चित्ता मन को एकाग्र कर लेना और मिलित दृश्य माने आँखों को बंद कर देते हैं माने क्या आँख और इंद्रियों को भी और वस्तुओं से हटा देते हैं ये शारीरिक हुआ और भीत मौना वचन वचन से भी कोई बात नहीं तो इसलिए तन मन वचन इन तीनों को भगवान की सेवा में लगा क्या हुआ तन मन वचन तीनों से कृष्ण की आराधना में लग गए साधक में यदि पक्षी ऐसा करते हैं तो मनुष्य के लिए कैसा होना चाहिए तन से मन से वचन से संयत होकर मुख से कोई वाणी नहीं तन के द्वारा दूसरा कोई कार्य नहीं मन के लिए दूसरा कोई चिंता नहीं तीनों को लगा दिया है भगवान की उपासना ऐसे ही साधक को तन मन वचन सब कुछ भगवान की सेवा में लगा शरीर द्वारा मैं कुछ नहीं करूंगा वाणी के द्वारा दूसरे कोई बात नहीं बोलूंगा मन के द्वारा कृष्ण सेवा के अतिरिक्त कृष्ण सेवा माने कृष्ण वैष्णव तो जीव वस्तु इनके अतिरिक्त और कुछ नहीं ऐसा जिसका साधन हो जाए ये उपासना है उसी को सनातन गोस्वामी जी बतला रहे हैं वृंदावन ही धन्य है पृथ्वी धन्य है इसलिए कि वृंदावन उसमें है और वृंदावन धन्य किस लिए जो कृष्ण वहां पर अधिभूत हुए हैं वहां पर और लीलाएं कर रहे हैं इसलिए वहाँ के और की तो बात क्या कीड़े तक भी वहाँ के धन्य भ्रमण जैसे कीड़े तक भी उनसे कुछ श्रेष्ठ ये पक्षी हैं उस भावने से भी अधिक सौभाग्यवान है वो कैसे कृष्ण की आराधना करते हैं वृंदावन के इसको ये दिख रहा है इस अभी जो ये वर्णन कर रहे हैं वृंदावन का वर्णन कर रहे हैं, ये वृंदावन असल है। हम अपनी आंखों से जो देखते हैं वो वृंदावन नहीं, यहाँ पर मारपीट गंगा प्रसाद ये सब होता है, तामसिक वस्तुएं होते हैं, चोर भी दिखाई पड़ते हैं, वो नहीं। कहते काम से देखो, ये कौन से काम से दिखला रहा है? सुख रूप में दिखला रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी, और विस्तृत रूप में दिख रहा है सनातन गोस्वामी, उनका सूत्र है और उसको विशेष रूप से व्याख्या करके ये सनातन गोस्वामी है। देखो जो वृंदावन कौन है और वृंदावन में कैसे लोग रहते हैं। इसलिए आंखों से देखने की अपेक्षा कान से देखना ये श्रेष्ठ है। अभी हम लोग कान से वृंदावन में चले, वहां देखते हैं क्या। जो कृष्ण के अधिक समीप में नहीं आ पाते वैसे जलचर पक्षियों के लिए उनका महात्म वर्णन कर रहे हैं। जैसे हंस हैं, सारस हैं और हैं जलचर के लिए, कोकिल सूप मयूर इत्यादि का नहीं, इनसे भी जो दुर्गत उनके लिए। दुख में दिन के दुख में गोपियां मग्न हो रही, अपना जीवन दिन कटा रही हैं कृष्ण की लीला कथाओं में, और उसमें ऐसी मत हो जाती है कि सब कुछ भूल जाते हैं। उनमें से कोई गोपी कर रही है सरसी, हे सखियां हे सखियां, जल जल में जल कमल, उसमें कमल होता है, तो सारस हंस ये सब क्या खाते हैं? कमल का मृणाल खाते हैं, ये उनके लिए भोग सामग्री है। तो जल कमल इत्यादि विचित्र मनोहर भोग सामग्री युक्त इस सरोवर सरोवर दूरे बस्ती, वो जो सरोवर है दूर है किंतु उसमें निरंतर विहार करने वाला संख्यातीत सारस हंस दूर करके जो चलती है
पानकौड़ी और संस्कृत जल कारंड
इत्यादि पक्षी हो। तो ये कृष्ण की बेनी गीत को सुन करके उस सरोवर से निकल करके निकट आ जाते हैं। सरोवर दूर है जिसमें कि कमल इत्यादि खिले हुए हैं, दूर से कृष्ण ने बंसी बजाई गोवर्धन के तट पर बंसी बजाई और सुन करके हृदय चित्त माने
हृष्ट चित्त प्रफुल्लित चित्त
गोपियों के
नहीं
उनके चित्त को चुरा लिया बंसी के नाद ने, और वो जब चित्त चुरा लिया गया तो वो लोग भी झट कूद करके जहां पर चित्त गया है वहां पर पहुंच गए और वहां पर उपासना में मत करो। उपासना किस लिए? हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं कि हमारा मन दे दीजिए, आपने जो चोरी कर लिया है वो मन दे दीजिए, मानो इसलिए उपासना ये। उपासना का लक्षण क्या होता है? उपासना माने ऊपर समीप आसन, आसन माने आना निकट रहना, इसको कहते हैं उपासना। जब हम अपने तन मन वचन और आत्मा के द्वारा इष्ट वस्तु के निकट हम जब वहां आते हैं तो इसको कहते हैं उपासना। अभी हम तन मन वचन और आत्मा का तो अभी ज्ञान ही नहीं, अभी विषयों के हम समीप रहे ना? सब समय कथा में हम अनुरक्त रहेंगे, भगवान के नाम में अनुरक्त रहेंगे, ये होगा नहीं। कुछ खंड तो एक घंटा दो घंटा करने के बाद में मन चंचल हो जाए, चाहे घर पर हो चाहे यहाँ, मन चंचल जरूर होता है, क्यों? उसमें अभी रुचि नहीं है। जिनकी रुचि हो जाएगी तो 24 घंटा बिना कहे वे चित्त तन मन वचन सबसे उनके निकट रहे। उपासना का लक्षण क्या है? यत चित्त मिलित दृश्य, मिलित दृश्य, दृश्य माने आंखें बंद हो जाती, और जत चित्त, चित्त संयत हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, और धृत मौन, मौन धारण कर लेते हैं, जीभ नहीं चलाते, बात नहीं करते। ये तीन उसके लक्षण हैं। ये बाहरी भी हो सकते हैं, भीतर भी हो सकता है। यदि कोई आदमी ऊपर से एकदम ऐसा हो जाए, आंख बंद कर दे और बात ना करे, तो ये उपासना हो जाएगी? नहीं भी हो सकती है। अभी चित्त ऐसा करके आंख बंद के विषय का ध्यान कर रहे हैं, आंख भी बंद है और मौन भी है और विषयों की चिंता हो रही है, तो वो विषय के समीप है, इसलिए वो विषय उपासना हो गई। लक्षण एक ही तरह के हैं, अधिकांश लोगों का यही है। भगवान ने यही एक रखा है जो कोई समझ नहीं सकता। साधक लोग अपने इष्ट वस्तु का ध्यान चिंतन करके और विषयों से चित्त को हटा लेते हैं। जैसे बिल्लो मंगल जी का देख लो, माधवेंद्रपुरी पाद जी का देखो, ईश्वरपुरी पाद हैं, महाप्रभु जी हैं, उनके परिकर लोग रूप सनातन चाहिए। रूप गोस्वामी बैठे हुए हैं और आंख बंद किए हुए हैं और मुख थोड़ा सा खुल गया, मुस्कुरा दिया, नहीं मालूम है जी क्यों ये हंस दिया या क्यों चुपचाप है, अपने इष्ट वस्तु के समीप है। और उस समय में मधुमंगल जी की बातों को देख करके कृष्ण के प्रति और हंस रहे। साधारण आदमी क्या समझेगा, एक लंगड़े भक्त थे, उन्होंने देखा, उनको बाह्य ज्ञान था, हमको देख करके हंस रहे, नहीं तो ये सदरे में इनका क्या वजह है हंसने का? जिसका चित्त जैसा होता है वैसा ही देखता है। वो कृष्ण की लीलाओं में मधुमंगल की भूमिका पर हंस रहे हैं और इन्होंने समझा जो हमारे लंगड़ेपन को देकर के हंस रहे हैं। वो भी समझे किस लिए, मुस्कुरा दिया थोड़ा सा, तो मुस्कुराते नहीं तो वो पता नहीं चलता। इसलिए सांसारिक दशा में भी ऐसा हो सकता है, विषयों का चिंतन करके भी आदमी हंस सकता है। ये भक्त लोग अष्टकालीय लीला में हैं और किसी लीला का चिंतन कर रहे हैं और करते 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 आंख से आंसू आ गए या हंस दिए, जमीन पर लौटने लग गए, देह की स्मृति तक नहीं है। ये उपासना है, चित्त उनका कृष्ण के समीप, वाणी के द्वारा सब समय उनके लीलाओं का कीर्तन करना उनके समीप, अथवा वाणी भी रुद्ध हो गई है, शारीरिक और जो क्रियाएं हैं वो भी विस्मित हो गए हैं, वो चित्त में वहां पर पहुंच गए आत्मा के द्वारा, तो ये भी सब विराम हो जाएगा। और कभी कभी तन्मय होकर के वो अनुभव के रूप में आत्मा में जो जो भाव प्रकटित होंगे इसमें भी वही बड़ा दुरू है समझना, ये कहां पर किस रूप में है, वही समझ सकता है जिनका चित्त वैसा है। इसलिए संयत चित्त होना, आंखों को बंद कर देना, धृत मौना, ये तीन उपासना का लक्षण कर रहे हैं। अन्य विषय मानसिक, कायिक और वाचिक, अखिल व्यापार उपरम हेतु, कृष्ण में एक तांता प्रकाशित हो रही है, मानसिक, कायिक और वाचिक समस्त चेष्टाएं कैसी हो गई है कृष्ण के अनुकूल अनुशीलन में। भक्ति का लक्षण क्या बतलाया गया है, लक्षण माने वो परिभाषा, अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मार्जनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलन। कृष्ण का अनुकूल रूप में अनुशीलन को भक्ति प्रश्न। इसमें अनुशीलन शब्द से शीलन धातु का अर्थ बताया। इस धातु का दो प्रकार से अर्थ करो। कैसे?
एक तो एक चेष्टा रूपा एक भाव रूपा।
चेष्टा रूपा और भाव रूपा इनके द्वारा तन मन वचन
चेष्टा रूपा में आता है।
इसके द्वारा कृष्ण के अनुशीलन की चेष्टा करने का नाम अनुशीलन है। तीनों चीजों के द्वारा एक तान होकर के कृष्ण के सेवा में इन तीनों को चिंतन में कीर्तन में स्मरण में उनको लगाना। और दूसरा
भाव रूपा।
भाव रूपा जो है वो दो प्रकार का। एक है निगेटिव रूप में ये तन मन वचन को किसी भी अनर्थ इत्यादि अपराध इत्यादि में न मरना, उससे दूर रहना, निषेध। और दूसरा है निवृत्ति रूपा। पवित्र रूपा तो ये चेष्टा होगी ना। निवृत्ति रूपा हुआ एक निषेध माने अहंकार इत्यादि जो है अनर्थों से चित्त को दूर कर दिया। और दूसरा है इससे भी ऊपर भावात्मक रूप में सेवा, वो और भी श्रेष्ठ है। भावात्मक भाव को कृष्ण के सेवा में सब प्रकार से लगाए। और ये भाव बढ़ते 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 निष्ठा रुचि आसक्ति भाव और फिर भाव से प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव इत्यादि का द्योतक हो जाएगा, अंत तक पहुंच जाएगा। वहां तक अनुशीलन है। श्रीमती राधिका जी की कृष्ण की सेवा या कृष्ण की राधिका जी के प्रति जो भाव है ये सब अनुशीलन के अंतर्गत में आ जाएगा सब कुछ। तो इसका बाहरी लक्षण कुछ बतला रहे, आंतरिक लक्षण ये नहीं है। बाहरी एक आप ये तो कर रहे हैं धृत मौना इत्यादि। कोई कोई होगा जो तन्मय होकर के गान करने लगा, नृत्य करने लगा, शारीरिक चेष्टा जमीन में लोट पोट करने लगा और पागल जैसा हो गया। इसको क्या करनी, भक्ति नहीं है, उपासना नहीं है, ये विशेष लक्षण है। इसलिए यहां पर दोनों प्रकार के अर्थ यहां करेंगे। बेनिदित से श्रवण करते यत चित्त। ये साधक कौन है? ये साधारण नहीं है। स्वरूप सिद्धि के बाद में वस्तु स्थिति में पहुंचे हुए हैं ये। ये जिनको भी कह रहे हैं वो सभी कृष्ण लीला के समय में वेणु गीत सुनने वाले जितने पशु पक्षी कीट पतंग पर्वत नदी नाला सब वहां पर पहुंचे हुए हैं। कोटि कोटि जन्मों के बाद में साधन भजन करके तब वहां पर पहुंचे हैं। हम लोगों को इन्हीं का अनुसरण करना है। यदि अनुसरण कर सके तो हमारा साधन भजन है। वेणुगीत बजेगी तो हम लोग नहीं सुन सके और ये सब समय महाप्रभु जी वहां सुनते हैं कि नहीं। पुरी में मधुर मुरली की तान सुन करके और न जाने क्या हो जाता है और कहाँ चले जाते हैं। समुद्र में गीत कूद पड़ते हैं, कहीं वन जंगल में चले जाते हैं कभी कुछ। उस समय तो और भी लोग क्यों नहीं सुन लेते। ऐसे ही वैसा कोई साधक होगा तो वो सुन सकेगा। और प्रकट लीला में सबके लिए कुछ सुलभ होता है। उसमें मन को संपूर्ण रूप से समाहित कर दिया है कृष्ण के दर्शन में, वेणी ध्वनि के सुनने में। मिलित दृश्य चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा त्वचा ये पांचों ज्ञानेंद्रियों को समस्त विषयों से उपरत कर दिया है। और उपलक्षण में और ये उपलक्षण में चक्षु का केवल यहाँ पर दिया दृक माने आंख, किंतु उपलक्षण में चक्षु नासिका जिह्वा त्वचा इत्यादि सभी कुछ आएगा। उनका सभी प्रकार का व्यापार सब बंद हो गया है। ऐसा यदि कोई साधक हो तो वो संसार के जितने भी कर्तव्य हैं, जिसके लिए कहा जाता है ये जीव का कर्तव्य है, मनुष्य का कर्तव्य है, उस समय वो छूट जाएगा तो वो क्या करेगा? संसार वाले कहेंगे अपना ये सब कर्तव्य छोड़ दिया। और शास्त्र क्या कहेंगे? यदि वो घर बार स्त्री पुत्र परिवार धन संपत्ति आसक्ति यहाँ तक कि वैकुंठ की इच्छा भी सब छोड़ करके तो बस एक वर्ष राधा कृष्ण की सेवा में कैसे नियुक्त हों इसके लिए पागल हो जाता है, तो यही उसका सर्व सबसे श्रेष्ठ और एकमात्र कर्तव्य है। किंतु ऐसा अधिकारी होना चाहिए, उसके पहले यदि छोड़ देंगे तो गड़बड़। जिसको भी कर्तव्य कर्तव्य का विचार है उनके लिए कर्तव्य करना उचित है। और जिसको ये सब भूल गया, दिन रात उसका मन ही उसके तरफ में चल पड़ा ऐसी उपासना में, उनके लिए अब कोई कर्तव्य नहीं। तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत जावता मत्तथा श्रणादो वा श्रद्धा जानी न जाए। इसको याद करते रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक नेह
नियत कर्म धर्मायो न विराय कल्पति न तिक्त पाद सेवाय जीवन न विमित ईश्वर।
यही ठीक है भाई, क्या बताया?
तावत कर्माणि
पूर्वी तक कर्म को करो, अपने कर्तव्य को पूरा करो। जावत निर्वेद जन जावत, निर्वेद न हो जाए, निर्वेद हो जाए तो कोई जरूरत नहीं। भर्तृहरि को भर्तृहरि जी अपना काम खूब अच्छी तरह से कर रहे थे, 40 वर्ष के नवयुवक हैं, बड़े सुंदर हैं, बड़े गुणी हैं, राज्य शासन की कला में भी बड़े निपुण पारंगत हैं, उनके दरबारी हैं 9 रत्न, कालिदास बराह मीर इत्यादि सब
बरर जीव तलवट घटक अमर सिंह
और अमरकोश के लिखने वाले क्या नाम
कालिदास बरर जी बराह मीर घटक अमर सिंह
इत्यादि, ये सब 9 इनके रत्न है। देखो 9 रत्न ही कैसे कालिदास बराह मीर और सब, तब ये कैसे जुड़ते हैं? किंतु उनका एक सुंदर नौलखा हार मिला उस समय का, रत्नों से जटित हीरों से जटित, उन्होंने पत्नी को दे दिया, पति ने अपने प्यारे एक सेनापति को दे दिया, सेनापति ने जाकर के एक वेश्या को दे दिया, और वेश्या राजा के रूप पर रिझी हुई थी, उसने राजा को लौटा दिया जानबूझ करके नहीं, उसको मिला उसने राजा को दे दिया, और राजा को प्रसन्न होकर के राजा ने उसे कहा कि भाई कहाँ तुमको मिला, तो सब चाह रही थी बोलने में, उन्होंने तलवार निकाला, अभी खत्म कर देंगे नहीं तो बतलाओ, उनका जो सेनापति ने दिया। अच्छा, सेनापति को बुलवाया, बड़े प्रेम से कहा जैसे ये तुमको कहाँ मिला, कहाँ से दिया उसको, वो कैसे कहें जी आपकी स्त्री ने दिया, जब तलवार का दिखलाया बतलाओ कहाँ किस कहाँ से यह हार मिला। उसने चुपचाप डर के मारे कह दिया ये रानी जी ने दिया। अच्छा, रानी जी को कहाँ से मिला था? मैंने ही तो दिया था, मैंने अपना सबसे अधिक प्रिय उनको समझा और उनको दिया, और उन्होंने दूसरे को प्यार किया, और दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, इस तरह से कोई किसी का ये नहीं है, विश्वास पात्र नहीं कहा, यही जगत है, बस छोड़ दिया, जगत को छोड़ दिया, विक्रमादित्य को राज दे करके चले गए। यही भर्तृहरि जी हैं, श्रृंगार शतक इत्यादि लिखा
भक्ति नाम से।
तो ऐसे ही संसार से जब विरक्ति आ जाए इन सब चीजों को देखकर के, तब संसार में उनका कोई कर्तव्य नहीं है। अच्छा, ये संसार से विरक्त होने वाले दो प्रकार के हैं, एक तो संसार से विरक्त होकर के मुक्ति के लिए एक पथ पर चलना, और दूसरे होते हैं भक्ति पथ पर चलना। इसलिए कहते हैं तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत जावता मत्तथा श्रणादौ वा, भगवान की कथाओं लीलाओं को सुनकर के श्रीमद् भागवत इत्यादि से या रसिक भक्तों से सुन करके उधर भगवान के भक्ति में रुचि हो जाए, वो संसार का कर्तव्य उसी समय में स्थगित हो जाता है। उस पर कोई भी पाप अपाप ये सब का कोई विचार नहीं करता, क्योंकि मूलतः शक्ति तो भगवान से नहीं है और भगवान की सेवा में नियुक्त हो गया तो कोई ऋण की बात नहीं। किंतु वैसा होना चाहिए तब। अब बीच में यदि छोड़ दिया तो वो भी डाली गई दोनों डाली गई। इसलिए कहते हैं हरि कथा में यदि रुचि हो गई और भगवत भक्ति के प्रति नियुक्त हो गया, संसारी कोई भी कार्य उसके लिए बाकी नहीं रहा, वो सब पूरा हो। इसीलिए तो हम आए हैं जगत में, ये काम पूरा हो गया बस चले। इसलिए कहते हैं कि जो लोग इस प्रकार से भगवान की उपासना करते हैं उन्हीं का जीवन सफल है। आज इन लोगों का जीवन सफल है, ये उपासना कर रहे हैं। बतलाया पहले संजय चित्त, फिर बतलाया देह, देह माने ये आंख इत्यादि, और फिर तो मौन वाक संयम उपलक्षण से समस्त इंद्रियों का संयम समझो। केवल वाणी पर ही नहीं, क्रोध मन वेग, क्रोध वेग जीवा वेग उदर वेग उपस्थ वेग, ये छह वेगों को समझ रखो। ये छह वेगों को संजय करके भगवान में चित्त को लगा दिया जाए, शरीर के प्रत्येक अंगों को लगा दिया जाए, तो इसको कहते हैं उपासना। और हमारा कोई अब संसार में कोई कुछ नहीं है, न हमको कोई लालसा है न कुछ है। यदि लालसा होगी उसके लिए करते हैं तो उसके लिए मिलेगा क्या? जिसको लेकर के जाएंगे एक फूटी हुई कौड़ी भी तो लेकर के नहीं जा सकते, कुछ भी नहीं लेकर के जा सकते। आप लोगों ने सुना होगा अकबर का दरबारी तानसेन बहुत ही सुंदर गायक था, वृंदावन में आया, गान करने लगा वल्लभाचार्य जी के सामने। वल्लभाचार्य जी ने उसको एक थाल में सोने की मोहरे और एक तरफ में फूटी कौड़ी दी, लेकर के उनको दिया उपहार। उन्होंने कहा महाराज सोने की असरफी का तो मैं समझ रहा हूँ बात, किंतु फूटी कौड़ी उसने क्यों रख दी? तो फूटी कौड़ी इसलिए रख दी जो ये संगीत में तुम पारंगत हो, इसके लिए तुमको मोहरे सोने की, किंतु ये फूटी कौड़ी के समान पारमार्थिक रूप में इनका कुछ भी मूल्य नहीं है, इसलिए मैंने फूटी हुई कौड़ी रख दीजिए। इसका मूल्य केवल फूटी हुई कौड़ी है। उसी प्रकार से आप सब कर्तव्य निर्वाह करते हैं और भगवत भक्ति नहीं करते हैं तो फूटी कौड़ी है, और यदि सब कर्तव्य करते हैं खूब अच्छी तरह से तो स्वर्ग इत्यादि, और वहां से फिर ढकेल दिया जाना या संसारिक सुखों को देकर के फिर उसको भी ढकेल देते हैं, बस यही लाभ, और दुख होगा। कोई स्वर्ग में जाए और देतालु पार पैर से लतिया कर, लतियाना जानते हैं, लतियाना
लात से मार,
हाँ नहीं जाता है और उसको लात से ढकेल रहे हैं, इसको लतिया करके यदि वहां पर स्थिर इस जगत में डाल देते हैं उस समय दुख होगा कि अधिक कि नहीं? जो स्वर्ग उतने नहीं गया, लतियाने की जरूरत नहीं, वहां पर जैसे तैसे है वो एक बात, और वहां पहुंच करके वहां से लातों से कर दिया शिव के बल में गिरा त्रिशंकुर की तरफ, वो बहुत दुख की बात होती है। ये संसार ही ऐसा है, ऐसा भगवान ने आसक्ति युक्त मोह युक्त बनाया है, तरह तरह के कर्तव्य पैदा कर दिए हैं, तरह तरह के इतना कर्तव्य पैदा किए हैं जिससे कर्तव्य रूपी जाल से निकलना बड़ा भारी है। ये लोग सहज ही जाल से निकले हुए भगवान के पास में चित्त लगाए हुए हैं, इसलिए समस्त इंद्रियों से कृष्ण के प्रति अपने को लगा दिया है, इसी का नाम है भजन। कोई भी चित्त की वृत्ति, रात में जब सो करके उठते हैं तो पहले किस चीज की याद आती है, किस चीज की याद है? यदि बिजनेसमैन है तो उसको बिजनेस की चिंता है। अभी जिनके घर में छापा पड़ा बेचारे बड़े दुखी होंगे, हमदर्दी सभी को उनके प्रति होनी चाहिए, किंतु वो सो करके, एक तो रात में नींद नहीं आती और नींद यदि आ भी गई तो जब उठ करके कौन सी याद आएगी,
वही दृश्य याद है,
वो दृश्य आएगा धक धक हृदय करने लगे। और वैसे ही जितने व्यक्ति होंगे ना, कहीं आज हमारे यहाँ ना हो जाए, हमारे यहाँ ना हो जाए, हमारे यहाँ बस धक 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 ये जगत ही है। बाक देव समस्त इंद्रियों के लिए सबसे बलवान है, बाक देव। ये बाक वेग आकर के बाकी सब देवों को बढ़ा देता है और समस्या यही पैदा करता है। बाक वेग को संयत किया जाए ना तब तो सब काम फल हो जाए, किंतु यही नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूँ महाभारत युद्ध, रामायण युद्ध इत्यादि सब बाग, ये बाग के कारण है। यहाँ पर हरी हरी माने हरी उपासक, हरी की आराधना कर, हरी माने चित्त को हरण करने वाला, हरी हरी हरती मन, उनके समस्त अंग बड़े मनोहर हैं, उनकी बंसी की ध्वनि भी बड़ो बड़ी मनोहर है, के अंग प्रत्यंग देखना सुनना चलना फिरना सभी कुछ, मधुराधिपते अखिलम मधुर, मधुरापते जो कृष्ण है उनके सब कुछ ही मधुर है। इसलिए पक्षी भी चारों तरफ से जिन सरोवरों में वो मृणाल इत्यादि खा रहे हैं, आस्वादन कर रहे हैं, उन सबको छोड़ दिया, वहां पर आना छोड़ दिया, बच सब पक्षियों के साथ में खेल रहे थे, कलरव कर रहे थे, बस उड़ करके जहाँ से सब गाया वहीं पर, जहाँ पर कृष्ण मधुर गायन कर रहे हैं वहाँ पर पहुँच गए। हरि समीप में मिलित होकर के परमानंद प्राप्त। हंत हंत माने खेद में और आनंद दोनों में, विस्मय में। हंत में यदि लेंगे तो इसका एक अर्थ लेंगे और विस्मय में लेंगे, आनंद में लेंगे तो एक अर्थ। शब्द हर्ष या निज अभीष्ट लाभ हेतु विस्मय, सरल सहज रूप में अपना इष्ट प्राप्त हो जाए तो उसमें विस्मय हो जाता है। एक आदमी कुछ चाहता है और सहज सरल रूप में वो अनायास ही वो दुर्लभ चीज मिल गई तो उसके लिए उसको विस्मय, वाह सुंदर मिल गई। तो ऐसे ये सखियां कह रही हैं इसके लिए, उन सारस आदि विहंगों के लिए, अथवा खेद या विषाद होने पर दूसरा अर्थ हो जाएगा। श्री कृष्ण के वेणुराग को सुन करके हृत चेत हो करके, अर्थात उनका चित्त चोरी चला गया, अर्थात चित्त को हरि में आकर्षण कर लिया, तो वो भी कृष्ण के समीप आ गए, क्योंकि आकर्षण कर लिया ना, पहले चित्त को आकर्षण कर लिया, चित्त के आकर्षण करने से आंखें भी आकर्षित हो गई, मन भी आकर्षित हो गया, शरीर भी आकर्षित होगा, उड़ करके बस चल गया। अब आए तो चित्त शांत हो गया कृष्ण के समीप आने से, वही खेद के साथ में कह रहे हैं। अब वो इसीलिए आ गई चिड़िया काकू उक्ति कलते, अब वो जो कलरव कर रही थी अब उनका कलरव करना एकदम बंद हो गया, एकदम बंद हो गया, कलरव हो रहा था आनंद से। अब वो पहले वहां पर रह करके पूजन इत्यादि कर रहे थे अपने बच्चों के साथ में, पति के साथ में, पुत्र के साथ में, अब यहां करके एकदम चित्त उनका कृष्ण में समाहित हो गया। अंतर और बाहर में दोनों तरफ से कृष्ण के समीप पहुंच गए, अंतर से भी बाहर से भी। और दूसरा जो अर्थ होगा ये तारा, क्या वो जत चित्त हुए, नहीं, ये चिड़िया सब चित्त संयम नहीं कर सके, वाणी को भी संयम नहीं कर सके और मन को भी नहीं संयम कर सके। क्यों? चित्त तो उनका चोरी चला गया, इनके थोड़े वर्षीय भूत है, कृष्ण ने हरण कर लिया है। इस समय में क्या हुआ, वो शरीर से नाचने लगे, मुख से कलरव कर ले गए आनंद से, और मन के द्वारा कृष्ण में और आकर्षित हो गए, तीनों उनके कंट्रोल से बाहर हो गए। वे आंखें बंद नहीं करके विस्फारित नेत्रों से कृष्ण का रूप देखने लगे, कानों से कृष्ण का ऐसे कर करके कान एकदम चित्त होकर के सुनने लगे, और सुनने के बाद में जब रहा नहीं गया तो नृत्य करने लगे, और फिर उसके बाद में अव्यक्त अस्फुट ध्वनि करने लगे। नेत्र चष्कों से पूर्ण करके अश्रु जल के द्वारा, आंखों के जल के द्वारा सौंदर्य सिद्धु को वमन करने लगे। आंखों के द्वारा ही जो कुछ उन्होंने अनुभव किया उसको आंखों के द्वारा, तथापि पान में विरत नहीं हो रहे हैं, पान करते ही रह रहे हैं। ये किसरी ये सब सनातन गोस्वामी दे रहे हैं, तात्पर्य क्या है? यदि पक्षियों को इतना कृष्ण के प्रति है, ये सब रागात्मिक जन है ये समझो, इनकी कथाओं को सुनने से यदि किसी को लोभ हो गया, ये ऐसा ही प्रेम हमको हो, मर जाते तो हम ऐसे पक्षी होकर के जन्म लेते, तो कृष्ण बंसी ध्वनि करते तो हम भी उड़ करके चले जाते। गोपी जन भी, गोपियां भी ऐसी कहती हैं, ब्रजवासियों जैसा हमारा भी कृष्ण के प्रति स्नेह हो। इसलिए धृत मौना न होकर के, अब वो धृत मौना नहीं होकर के उच्च कंठ से अपनी जाति के पक्षियों को आह्वान करने लगे, इधर आ जाओ इधर आ जाओ, देखो कृष्ण को दर्शन करो, और सभी लोग मिलकर के आह्लादित चित्त से कृष्ण 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 सभी पक्षी लोग कहने लगे। इस प्रकार से अंतर्बाह्य नाना प्रकार के विकार प्राप्त होकर के वे उपासना के लिए विचित्र रूप से निमेश शून्य दृष्टि से कभी अपांग दृष्टि भंगी से उस रस सिंधु के का पान कर, कौन रस सिंधु? कृष्ण के अंग सौंदर्य माधुर्य और उनकी बेणु के माधुर्य को रस सिंधु का वो पान करने लगे समस्त इंद्रियों के द्वारा। इतनी कल्पना की आवश्यकता क्या है? वो ऐसी उपासना करके अंत में भीतमौना अर्थात आंखें उनकी बंद हो गई, शरीर शिथिल हो गया और वो प्रेम मूर्छा में चले आए, प्रेम मूर्छा उनकी हो गई, मन भी भरा रह गया, शरीर भी रह गया, वाणी भी रह गई, मूर्छित होकर के वो गिर पड़े। उनका लक्षण जतचित्त लीन अंतःकरण विस्फारित नेत्र धृत मौन इत्यादि, ये सब प्रेम मूर्छा के ही ये सब चिन्ह है, प्रेम में मूर्छित हो गए। तात्पर्य कि पक्षी लोग सजीव विजाति हैं, पुरुष नहीं है, ये लोग पक्षी हैं और कृष्ण पुरुष जाति हैं, नर जाति हैं, कृष्ण जमीन पर चलने वाले हैं और ये आकाशचारी हैं, और दुरस्थित सरोवर में विचरण करते हैं, तथापि कृष्ण के वेणु गीत को सुन करके आकर्षित होकर के वेणु ही उनको आकर्षित करके उनके समीप में लाती है। प्रेम आविर्भाव के कारण सहज रूप में धैर्य शांति इत्यादि को वो दूर कर देते हैं। भक्त लोग कभी भी शांति नहीं चाहते हैं, प्रेम शांति का नहीं होता, शांति होता है योगियों को, ये योगी लोग शांति चाहते हैं, भक्त लोग शांति में जाते हैं, शांति माने चुपचाप हो जाना, निरत हो जाना सब कार्यों से। भक्त ऐसा नहीं चाहे, वो सब समय कीर्तन में भगवान की सेवा में इसमें में रहेगा, इसलिए उसको शांति की आवश्यकता नहीं, यही परम शांति है। इसलिए विचित्र विकार विस्तार परम मोहनत्व स्वरूप मोहन स्वरूप उनकी उपासना में नियुक्त हो जाते हैं। है हम लोग इसके लिए संभव, हमारे लिए नहीं, गोपियां कर रही हैं, हम जैसी गोपियों के लिए क्या ये कभी दशा होगी कि हम भी मन को तन को वाणी को समझ ऐसा करके ऐसे प्रेम की अवस्था में आकर के कृष्ण की निकट से उपासना करें, यह कभी संभव है? प्रायो बतंग मुनयो विहगा वनस्मिन् कृष्णेक्षितं तदुदितं कलमेनुगीतं आलुय्य गेदुम भुजां रुचिर प्रमाणान् श्रृण्वन्ति मिलितदृशो विगतन्न वाच प्रायो बतंग मुनयो। कहते हैं फिर आवेश में भर जाते हैं कौन, सुखदेव गोस्वामी अविधा सनातन गोस्वामी इधर परीक्षित महाराज जी भी अपनी मैया को बड़े प्रेम के साथ में सुना रहे हैं। इनको अभी आज ही जाना है, आज ही भाव को पार करके चले जाना है। लोग समझते हैं मूर्ख लोग अज्ञानी लोग सांप ने काट दिया ये मर गए, कभी ऐसा मत समझना।